ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। श्रीमद् भागवत महापुराण से पाठ पंचम स्कंद षष्ठ अध्याय श्लोक संख्या 16। ये गद्य आकार में है, आप लोग शायद आवृत्ति नहीं कर पाएंगे, केवल मैं पढ़ लेता हूं। इतिहास्म सकल वेद लोक देव ब्राह्मण गवाम परम गुरोर भगवत ऋषभ अख्यस्य विशुद्ध चरितम इरितम पुंसा समस्त दुश्चरिता अभिहरणम परम आह मंगलाय मंगल आयन इदम अनुसद्धयो चित्त अनुसृणुत्य श्रावयति वावहितो भगवती तस्मिन् वासुदेव एकांततो भक्तिर अनयोरपीर अनुवर्तते। शब्दानुवाद इति इस प्रकार हस्म निसंदेह सकल संपूर्ण वेद ज्ञान का लोक जनता का देव देवताओं का ब्राह्मण समस्त ब्राह्मणों का गवाम समस्त गायों का परम गुरु या स्वामी भगवतः भगवान का ऋषभ अख्यस्य जिनका नाम ऋषभ था विशुद्ध आचरितम शुद्ध चरित इरितम अब जो व्याख्या किया गया पुंसाम प्रत्येक जीवात्मा का समस्त संपूर्ण दुश्चरित दुष्कर्म अभिहरणम विनाश करते हुए परम अग्रणी महान मंगल अयनम कल्याण का निवास स्थान इदम यह अनुश्रद्धया श्रद्धा के साथ उपचित्तया मनोजोग के साथ अनुश्रुणोति अधिकारी से सुनता है अश्रावयति और दूसरे से सुनाता है बा अथवा अवहितः सावधान होकर भगवती भगवान में तस्मिन् उस वासुदेवे भगवान वासुदेव कृष्ण में एक अंततः एकांत भाव से भक्ति अनयोः श्रोता और वक्ता दोनों को अपि निश्चय ही समनुवर्तते वास्तव में प्रारंभ होती है। अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा ऋषभदेव समस्त वैदिक ज्ञान मनुष्यों देवताओं गायों तथा ब्राह्मणों के स्वामी है। मैं पहले ही उनके विशुद्ध दिव्य कार्यकलापों का विस्तार से वर्णन कर चुका हूं। जिनसे समस्त जीवात्माओं के पाप कर्म मिट जाएंगे। भगवान ऋषभदेव की लीलाओं का यह वर्णन समस्त मंगल वस्तुओं का आगार है। जो भी आचार्यों का अनुसरण करते हुए इन्हें ध्यान से सुनता या कहता है, उसे निश्चय ही भगवान वासुदेव के चरण कमलों की शुद्ध भक्ति प्राप्त होगी। तात्पर्य, भगवान ऋषभदेव के उपदेश सभी युगों के मनुष्यों के लिए है, चाहे सत्ययुग हो अथवा त्रेता, द्वापर या विशेषतया कलिजुग। ये उपदेश इतने प्रभावशाली हैं कि इस कलिजुग में भी केवल इनकी व्याख्या करने से, आचार्यों का अनुगमन करने या ध्यान पूर्वक सुनने से सिद्धि प्राप्त हो सकती है। जो ऐसा करता है उसे भगवान वासुदेव की शुद्ध भक्ति का पद प्राप्त हो सकता है। भगवान तथा उनके भक्तों की लीलाओं का संग्रह श्रीमद् भागवतम में इसी उद्देश्य से किया गया है कि इन्हें सुनते तथा सुनाने वाले शुद्ध हो सकें। नित्यम भागवत सेवया, भक्तों को नियम अनुसार नित्य प्रति हो सके तो प्रतिदिन 2400 घंटे श्रीमद् भागवत का पठन, कथन तथा श्रवण करना चाहिए। यह श्री चैतन्य महाप्रभु की सलाह है, कीर्तनीय सदा हरि। मनुष्य को चाहिए कि या तो वह हरे कृष्ण महामंत्र का जप करे या श्रीमद् भागवत का पाठ करे, और इस प्रकार भगवान ऋषभदेव, कपिल तथा कृष्ण रूप में प्रकट होने वाले भगवान के चरित तथा उपदेशों को समझे। इस प्रकार भगवान की दिव्य प्रकृति से परिचित हुआ जा सकता है। जैसा कि भागवत गीता में कहा गया है कि जो भगवान के जन्म तथा कर्म के दिव्य स्वभाव को जान लेता है उसे भवबंधन से मुक्ति मिल जाती है और वह परम धाम वापस चला जाता है। ओम अज्ञानं तिमिरांध्यस्य ज्ञानांजनशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामयहं ददाति स्वपदान्तिकं। वंदे अहम श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणं रघुनाथं नितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री श्री राधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्री विशाखानितं स नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्त वृंद। बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये पंचम स्कंद भागवत में 5 और 6 अध्याय जिसमें ऋषभ चरित्र के वर्णन है, भगवान ऋषभदेव जो प्रियव्रत के वंश में भगवान आदि नारायण स्वयं ऋषभ के नाम से अवतरित हुए थे। यहां पंचवा स्कंद में 5वां अध्याय में उनके उपदेश का वर्णन है। उन्होंने अपने ब्रह्मावर्त में सारे साधु समाज के साथ अपने अति निष्ठावान समदम गुण से समन्वित 100 पुत्रों को जो उपदेश दिए थे, लगभग 27 श्लोक में उनके उपदेश हुआ। सुखदेव गोस्वामी उनको कहे क्या उपदेश दिए थे। उसके बाद में ऋषभदेव स्वयं राज्य आदि त्याग करके परमहंस पद को प्राप्त धारण करके किस प्रकार वो चले गए दक्षिण मथुरा के मदुराई की ओर, वहां पर्वत्य अंचल में कुटकाचल में जा करके वहां किस प्रकार अपने अंतिम लीला किए, देहत्याग की लीला किए कि बड़े बड़े जोगेश्वर को आपने शरीर त्याग का शिक्षा देने के लिए इस प्रकार किए, तो ये चरित्र को वर्णन करके ऋषभदेव की शिक्षा और उनके चरित्र, वो किस प्रकार परमहंस स्थिति में गए, किस प्रकार पूर्ण देह इंद्रिय कामना से पूर्ण अनासक्त भाव से उन्होंने अपने जीवन को निभाया और अंत में इस कुटकाचल में बड़वाग्नि उस वन में अग्नि में भस्मभूत हो गए, इसको कह करके और उनका प्रशंसा करते हुए कि उनका जो ये परमहंस प्राय योगी के जैसे नीति, ये अभी तक कोई ऐसे योगाचार्य उनको अनुकरण नहीं कर सकता, लेकिन उनसे शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, ऐसे कह करके आज के श्लोक में सुखदेव गोस्वामी अभी हम लोग के लिए कुछ कह रहे हैं कि हम लोग तो ना तो ऐसा योगी बन सकते हैं ना सोच भी सकते हैं, लेकिन फिर भी आप कर नहीं सकते, बन नहीं सकते हैं, फिर भी बोलते हैं उनका ये जो शिक्षा है ऋषभ देव जी का, ये सर्वकालिक है, सभी के लिए है, कोई ऐसे युग में ऐसे निर्दिष्ट रूप में नहीं, सत्य त्रेता द्वापर कली प्रत्येक युग में प्रत्येक प्रकार के प्रत्येक वर्ण के पुरुष मात्र के लिए अति उपादेय है। विशेष करके इस कली युग का तो कहना कि हमारा तो दुर्दशा है, हमारा पास में और कोई शक्ति है ही नहीं, अन्य अन्य युगों की तुलना में हमारे पास कोई सामर्थ्य नहीं, कोई शक्ति नहीं, कोई उपाय नहीं है, तो विशेष करके कलयुग के लिए हम जैसे लोगों के लिए सुखदेव जी ने आज के श्लोक में आशीर्वचन देकर कहते हैं इतिहास्मः कि इति इस प्रकार, कोई प्रसंग को जब एंड करना होता है, अंत करना, तो इति कहते हैं, शुरुआत करने से अतः, अतः शुरुआत होगा, इति शब्द मैंने दैट्स इट हो गया पूरा, तो इति इति कह करके ऋषभ चरित्र को पूर्ण करके अभी हम जैसे कलयुग की श्रोताओं के लिए आशीर्वचन दे रहे हैं, आशीर्वाद देकर कह रहे हैं कि ये जो ऋषभ देव थे कौन थे, ये श्लोक में इतिहास में लोक गुरु देव गुरु गो संप्रदाय के गुरु देवताओं के गुरु समाज के वेद के सभी के गुरु थे, सबके शिक्षक थे, सबके मार्गदर्शक थे, क्योंकि भगवान स्वयं थे, भगवान आते हैं जीव को उद्धार करने के लिए, तो उनने यही शिक्षा देने, आपने स्वयं आपने आचरी धर्म परेरे सिखाए, स्वयं आचरण करके शिक्षा देने के लिए आए थे, और इतने भारी गृहस्थी धर्म स्वीकार किए कि 100 पुत्र थे उनके, आजकल कोई ऐसे सेंचुरी लगा सकते हैं नहीं, एक दो में तो बंद कर देते, बोलते नहीं, लेकिन 100 के 100 पुत्र थे, और उन पुत्रों की क्या महिमा है, एक से एक। तो ऋषभ देव ने ये उनका संपूर्ण समाज के देवताओं के वेद के शिक्षाओं के ब्राह्मण को सभी के हितकारी सभी के गुरु, इसमें कहा गया सुखदेव कहते हैं कि सभी के श्रेष्ठ मार्गदर्शक नेता थे, उन्होंने जो आचरण किए उनके जीवन में वो अति पवित्र विशुद्ध चरितम और चरितम इरितम, मैंने चरित्र जो मैंने अभी व्याख्यान किया जो बताया, और विशेष करके चरित में ये कहते हैं कि जो 5वां स्कंद के 5वां अध्याय के 1 नंबर श्लोक से 27 नंबर श्लोक तक जो मैं बताया, जो ऋषभ देव का अंतिम उपदेश अंतिम शिक्षाएं जो थे जो उनके पुत्रों के सामने उन्होंने किया, उसको जो सुनता है, इसमें 2 शब्द आया है श्रुत्वा श्रावयित्वा अपि, इसको आचार्य लोग कहते हैं कि सुखदेव गोस्वामी कहते हैं बाकी हम लोग तो कुछ कर ही नहीं सकते योग हो गैसा, लेकिन कम से कम सुन तो सकते हैं। भले उसको अधिकारी प्रामाणिक वक्ता से अगर कोई ढंग से मनोयोग पूर्वक ध्यान दे करके केवल सुने और दूसरे को सुनाए, कहे दूसरे के सामने, और जहां ऋषभ देव की शिक्षाओं का चर्चा होता है, सुनना बोलना होता है, कोई और लोग आ नहीं पाए, कोई रेडियो में भी सुने तब भी चलेगा, कोई आ नहीं पाए बोले मैं आ नहीं पाया, मैं आना चाहता तो था, अनुमोदन करता उसको कहते हैं कि दे आर डूइंग गुड, वो अच्छा करते हैं, उनको सपोर्ट करता, अनुमोदन करता, बोले अनुमोदन करता श्रोता वक्ता किसी प्रकार से सभी का क्या होगा ना, उनका जीवन में जितने दुष्कर्म था सभी का अभिहरणम पूरा पूरा हरण हो जाएगा। आप चाहते हैं आपके जितने गलत बुद्धि है, जितने हमने कचड़ा इकट्ठा करके रखे हैं, दुष्चरित्र जो सो करके आए स्टक, और सारे क्लीन हो जाए, सब चाहते हैं, तब ये उपाय है बताए। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, हम नहीं कहते, ये उनके प्रेस्क्रिप्शन है कि अगर आप लोग आपने अभी तक अनंत जन्म से जितने स्टक रखे हैं दुष्चरितम, जितने दुर्गुण के इकट्ठा कर पाए हैं, वो सबको एक बार में डिलीट बटन अगर दबाना चाहते हैं, तो इस ऋषभ शिक्षा ऋषभ चरित्र को मनोयोग के साथ ध्यान दे करके प्रामाणिक स्रोत से सुनिए। और सुनना केवल बैठकर सुनने से सुनना नहीं होता, इस भागवत महापुराण के महिमा बताते हुए पद्म पुराण में एक प्रसंग आता है, आप लोग सुने होंगे, धुंधुली धुंधुकारी चरित आत्मदेव कथा। उसमें आत्मदेव ब्राह्मण थे, उनके पुत्र नहीं होते थे, संतान नहीं होते थे, तो बड़े दुखी हुए, गांव में इधर उधर लोग उनको बड़े क्रिटिसाइज करते थे, बड़े दुखी होकर के हर एक प्रकार के क्रिया मुद्रा जो भी सब करना था, जो लोग बोले सब कुछ किए, पूजा उजा मनुष्य सब किए, दान दक्षिणा हुआ नहीं, बड़े दुखी होकर के चल गए जंगल में, बोले यार कुछ नहीं हो तो मर जाओ, कि लोग इतने क्रिटिसाइज करते हैं मुझे, अपुत्री के मुरन मुंह नहीं देखते हैं, ये नहीं करते। तो दुखी होकर के जब देहत्याग करने तक गए थे, कोई उनको ऐसे संत मिले, उनके दुख को देख करके बोले क्यों ऐसे दुखी हो रहा है, मैं आपको एक ये फल देता हूं, ये चमत्कारी फल, उसको ले जाओ और अपने पत्नी की दो, और कुछ नियम निष्ठा के साथ उसको खाए फल को, तो और उत्तम पुत्र प्राप्त होगा। तो बड़े प्रसन्नचित होकर इसे फल को लेकर के आए, दिव्य फल को, और अपने पत्नी को समझा करके फल की महिमा उनको खाने की, लेकिन उनकी पत्नी ऐसी थी, वो पुत्रवती तो होना चाहती थी लेकिन गर्भधारण नहीं करना चाहती थी, बोले ये दिक्कत काम है, ये बड़े कठिन को देखी होगी सुनी होगी, बहुत कठिन होता है, इतने 9 महीना तक यंत्रणा, बोलते ना ये डिफिकल्ट कोर्स नहीं करना है मुझे, पुत्र ऐसे ऐसे मिल जाए तो, लेकिन बोला कि उसको खाएगी तो गर्भवती होना है, तो पति ने इतने ये करके लाए, तो इसलिए उनके सामने तो कुछ नहीं बोली, बोलकर ले लिया उसको, हाँ खा लिया करके मान लिया उनके सामने, पतिदेव ने विश्वास कर लिया, लेकिन वो खाया नहीं था, उसको अपने गाय को खिला दिया, बताओ अपने पति ने अपने जी जान लगा करके, अपने प्राण पर्यंत बाजी में लगा कर जिस दिव्य फल को लाए, उनके लाकर कितने दिए थे, उनको गाय को खिला दिया, और पति बोलते गर्भवती का दिखाना पड़ेगा ना रोल, तो एक्शन कैसे हो, एक्शन करने लगी वो, कपड़ा अपड़ा बांध करके अपने को दिखाने लगी कि मैं गर्भवती हूं, वो बोलती थी, मन में सोचती थी अगर सचमुच गर्भवती होता तो चलने फिरने में तो दिक्कत होगा ही, अगर घर में पतिदेव कहीं चले जाते हैं काम में, घर में कोई चोर पर घुस जाए तो मतलब बड़ी दिन उठकर उनको भगाने से कुछ नहीं कर सकते। तो ये कई प्रकार आपने मन में जुक्ति करके हो, फल नहीं खाया, ऐसे कपड़ा वपड़ा बांध करके रोल किया। भाई रोल कितना दिन करेगा, न 10 महीनों तो पुत्र होना चाहिए। तो आपने एक बहन थी, वो उन्हीं की तरह थी, तो उनके आगे बेटा हुआ था, वो सचमुच हुआ था, उनका रोल नहीं था। तो गरीब थी, और गरीब थी, उनके बेटा बोला क्या करूं कैसे, तो उनसे कंट्रैक्ट एग्रीमेंट साइन किया, एग्रीमेंट करके लाया कि देखो मुझे दे दो, आपका तो फिर भी हो सकते हैं, हमको दे दो और हम उसको पाल कर रखेंगे, पति को बता दूंगा ये हमारा पुत्र है। तो उनसे, वो गरीब थी तो दे दिया उनको, उनसे ले आया, ले आकर पतिदेव को बताया कि हमारा पुत्र है करके। तो पतिदेव तो इतने प्रसन्न होकर के पुत्र के जन्म संस्कार कराए और उनके सठी पूजन, 21 दिन में नामकरण और आदि आदि जितने सब फीस्ट भंडारा सब कुछ किए, खूब खुश हो गए उन्होंने, क्या पता था कि है ना। तो इस प्रकार करने लगे, वो बदमाश महा था ही। अरे भैया कितने, अगर लहसुन, लहसुन के बीज को, लहसुन को अब इतर कस्तूरी चंदन बहुत लेप करके और खेती में सारे डाल करके उसमें अगर रोपण करो, बो दो उसको, तो जो लहसुन का उगेगा, जो लहसुन होगा वो क्या चंदन इतर का कोई सेंट आएगा उसमें? नहीं होगा, नहीं हो सकता, जो जैसे है वैसा ही होगा। हाँ, हमारे एक पद में कहते हैं कि एक बार एक सुअर ने ओ देखा गाय को सब पूजा करते हैं, सम्मान करते हैं, तो बोला व्हाई नॉट मी, मेरा क्या कमी है भाई। तो बहुत कंसल्ट किया होगा उनको, तो पता चला कि गाय पवित्र प्राणी है, तो इसलिए हर कुछ, तो बोला मैं पवित्र हो जाऊंगा उसमें क्या है, पूरी भी किसमें पवित्र होना है ना। तो उन्होंने इस पद में लिखा गया, कवि ने लिखते हैं कि बरजी बरसे अमिध्य ग्रास, एक साल तक त्याग दिया, वर्जन किया। क्या अमिध्य मतलब विष्ट आदि जो उनका रेगुलर डाइट होता था उसको छोड़ दिया उन्होंने, डाइटिंग किया मतलब छोड़ दिया उसको, जो रेगुलर प्रसाद हल्के खाना वो नहीं खाया। अमिध्य ग्रास इस प्रकार जो उनके शुक्र का नॉर्मल भजन उसको छोड़ दिया एक साल तक, छोड़ बरजी बरसे अमिध्य ग्रास, बर जीव रसे दही मानस, बर जीव मतलब, बर मतलब श्रेष्ठ, जीव मतलब गाय, श्रेष्ठ जीव गाय को माना जाता है प्राणी, गोरस केवल गाय के दूध पिया एक साल तक, देसी गाय के, देसी गाय के दूध एक साल तक पिया। ओके, एक साल तक अपना जो नॉर्मल फूड छोड़ दिया, ए डाइटिंग में रहा उन्होंने, बोला पवित्रकरण करना, प्यूरिफाई करना है मुझको। और क्या किया, तो पवित्रकरण करने के लिए बरजी बरसे अमिध्य ग्रास, बर जीव रसे देई मानस, देहे मंदाकिनी रज लगाई, मंदाकिनी गंगा, गंगा जी में प्रतिदिन स्नान किया एक साल तक, त्रिसंध्या करता, 3 बार गंगा जी में डुबकी लगाया, और तिलक तो लगाना नहीं आता था, तो पूरे गंगा मूर्ति का, गंगा रज को पूरे शरीर में लोटता था, मतलब गंगा के किचड़ में लोटपट होता था, अपने कुशी में ड्रेस करता था, देहे मंदा के नीरज लगा, गंगा के रज को पूरे शरीर में लगाता था एक साल तक। तो इस प्रकार करने से गांव के स्वर एक साल पते का गाय की तरह सम्मान पाएगा, हो सकता है? तो कभी लिखते हैं कि बोले यही होगा, केवल लोग हंसेंगे उसको देख करके, इतना ही रिजल्ट होगा और कुछ नहीं होगा, बोले देखो पागल के और क्या रहा है ना। नहीं, तो इस प्रकार वो भले कितने उनको फेस्टिवल करे, कुछ करे, नामकरण करे, कुछ करे, लेकिन है तो बच्चे दूसरे का और उनके दूसरा कुछ है माल मसला, वो कैसे ये बनेगा, दिव्य फल का तो पुत्र है नहीं, लेकिन वो दिव्य फल जो गाय को खिला दिया था वो क्योंकि दिव्य फल हो तो अपना करामत दिखाएगा। वो गाय गर्भवती हुआ और उनका एक बछड़ा हुआ, बछड़ा हुआ तो मिक्स ब्रीड हुआ, क्योंकि तो उनका मुंह जो था मतलब मनुष्य जैसा दिखाई पड़ रहा था, हाथ पैर था लेकिन मुंह था गाय की तरह और कान भी गाय की तरह था, तो इसलिए उसको गोकर्ण नाम पड़ा। उसका नाम क्या पड़ा? गाय जैसे मुख था कान था इसलिए गोकर्ण हो गया, बातचीत करता था लेकिन संत। और क्योंकि साधु कृपा का वो पुत्र था तो इसलिए उन्होंने संत बना, उनके स्वभाव ऐसा बना और वही बड़ा बदमाश बना। तो दोनों लड़के हुए, बोले चलो एक गाय के भी लड़का हुआ, सारे जगह में हल्ला हो गया, ही तो गाय के भी मनुष्य लड़का हुआ। लोग आए जी, दोनों लड़के घर में रहे, वो इतने शांत स्वभाव का था गोकर्ण और ये इतने बदमाश था, बिल्कुल अपोजिट थे। लेकिन वो उसको तो अपना बेटा मानता था, उनको सब कुछ खिलाना पिलाना, गाय को क्या झूठा खिलाते है ना, खा पी के बच्चा तो दे दो नहीं तो जाओ जंगल में चर के आओ। लेकिन अरे मनुष्य था वो, गाय थोड़ी था, लेकिन फिर भी ऐसे झूठन फुटन माने ऐसे नेग्लेक्टेड हुए में उसको पालन करते, लेकिन फिर भी वो सहन करके रहता था गोकर्ण। अब उनको जैसे उनके युवक अवस्था आ गया और ये बदमाश ने पढ़ा लिखा तो कुछ किया ही नहीं, इतनी बदमाशी किया उनके पिताजी जितने परिश्रम करके कठिनाई से संचित धन किए थे उसको भोग करने लगा, वेश्या संगत किया और धूम ये सब नाना प्रकार जो चार नियम हम पालन करते ना उसको ठीक से पालन किया, मतलब हम नहीं करना चाहते हैं है ना, नो मेडिटिंग, नो इलिसिट सेक्स, नो गैम्बलिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, ओ एस गैम्बलिंग ये सब में एस लगाया, उसको करना है विधिवत, उस चार को पालन किया। लेकिन पिताजी बड़े दुखी थे उनको देख करके, उनके दुष्कर्म दुष्कार्य को इस प्रकार उनके स्वभाव बहुत दुखी थे, बहुत समझाते थे पढ़ाते थे खूब बैठ करके, वो ब्राह्मण थे बड़े खूब उनको समझाते थे, लेकिन काहे वो बनेगा, कितने करने थोड़ी बनेगा, नहीं बना। माताजी उनके सपोर्टर थी, उनको पता था ये तो कौन है। अब हुआ क्या, पिताजी दुखी होकर के उनके आचरण, वो भी समझाता था गोकर्ण, नहीं हुआ गोकर्ण को मारपीट करता था पिताजी को और उन दोनों को। तो गोकर्ण ने बोले कि इस घर में रह नहीं सकता, वो घर छोड़ के चले गए, वो चले गए, बोले साधन भजन करना है यहाँ क्या, यानी पिताजी को बोल को चले गए घर से। तो वो चले गए तो पिताजी और दुखी हो गए, आत्मदेव और दुखी हुए और उनके क्रिया मुद्रा से इतने दुखी होकर पत्नी से दुखी होकर के क्या सारे धन जा रहा है, सारे बदनाम हो रहे हैं, वो भी घर छोड़ के बोले इससे उन्होंने इससे अपुत्रिक रहना कितने अच्छा था, मेरे पुत्र हुआ क्यों पुत्र के लिए बहुत पश्चाताप किए अनुताप किए, मेरे पुत्र नहीं था मैं कितना अच्छा था, ऐसे पुत्र प्राप्ति करने कितने में परेशान है। अब मरने जा रहे थे, पहले पुत्र नहीं था इसलिए दुखी मरने जा रहे थे, अभी पुत्र मिला अभी मरने जा रहे दुखी होकर, अब छोड़ के चले गए जंगल में, घर आए नहीं, बोले ना नहीं आ रहा हूं, रह नहीं सके घर छोड़ के चले गए दुखी होकर के। अब रह गए बेटा और उनके माता, और इसी प्रकार उनने घर में अत्याचार किया, धन आदि का कमी पड़ा, तो कई वेश्याओं के साथ रहा, तो उनके उनकी मां को मार करके डाल दिया कुएं में, आप लोग पढ़े होंगे बड़े विकट वर्णन है। और इस अवस्था में तो उनके जो वेश्या संघ थे और भी देखे, धन खत्म हो गया कौन रहे, तो भी उनको मार पीट करके उनको डाल करके चले गए, तो मरा इस प्रकार अवस्था में प्रेत बना है ना। तो ओ गोकर्ण एक बार आते थे, बोले चलो गांव में कैसा है थोड़ा देख कर आता, माता पिता भाई कैसे हैं, और जाकर देखा कुछ नहीं, घर उजड़ चुका है। ओ शाम हो गया था, घर के पास जाकर के सो गए, तो रात में वो आया विकट भूत, खूब आकर के उनके डरावना दिखाया, लेकिन वो तो आत्मज्ञानी थे, वो डरे नहीं, पूछे बोले कौन हो आप, बोला मुझे नहीं पहचानते, मैं तो धंधुकारी हूं, बोला रे मुझे पता चला था कि तू इस प्रकार मरा है करके, मैं इसलिए तो आया, मैं तेरे लिए तो गया, मैं श्राद्ध भी किया था और इतने भंडारा भी कर दिया हूं, गीता पाठ कराया वो सब कराया, इतने सारे कराया मैं कर्मकांडी वो सब किया, तेरा उद्धार नहीं हुआ, बोला ना आप कुछ भी कर लो मेरा अभी उद्धार नहीं हुआ, मैं इतने पाप किया हूं, मेरा उद्धार नहीं हुआ है। तो उन्होंने वो बहुत भूत के रूप में रोने लगा, बोला बहुत दुख मिलता मुझे, कुछ करो मेरे लिए, तू कुछ कर सकता है। तो उन्होंने बोले चलो, संत दयालु होते हैं, बोले तुझे उद्धार करूंगा। तो हरेक प्रकार के जो उनका था, जो सीखे थे, सब कुछ के कुछ काम नहीं किया, कोई मेडिसिन काम नहीं किया। अंततः उन्होंने भगवान सूर्य से कंसल्ट किए, तो उन्हें भागवत के कराने के लिए बोले। तो गोकर्ण जी ने भागवत किए, उनको बोले, वो देख रहा था कि इतने सारे काम किया मेरा कुछ भी नहीं हो रहा है, इतने पापी मैं दुष्कर्म वाली हूं। तो अंततः जो गोकर्ण ने भागवत किए, बोले देखो ये फाइनल, उसी में उधर तू इतने सीरियस होकर के धुंधकारी प्रेत ने भूत ने आकर के बैठा, असर शरीर तो उनका था नहीं, बोलते हैं एक बांस का ये था, उसके आकर बैठा, इतने सीरियसली सुनता था, खान पान तो है नहीं, बैठ करके सुनता था। सुनने के बाद अब एक एक दिन कथा के बाद बोलते बांस का एक एक गांठ फूट जाता था। सातवां दिन जब पूरा हुआ तो वैकुंठ से विमान आया और उनको बैठा कर ले गए। तो सारे बैठे थे, वक्ता बैठे थे गोकर्ण जी और बाकी गांव वाले सभी सुन रहे थे, बैठे थे उनके सामने। बोले ये क्या हो रहा है भाई, हम भी सब बैठे हैं, ये तो अशरीर ही था प्रेत, बांस में बैठने वाला डंडे में, उनको उधार हो गया ले गए, हम लोग कैसे कैसे रह गए कैसे। तो जो वक्ता थे भागवत वक्ता गोकर्ण जी, वो रुके विष्णु दूत को, बोले थोड़ा रुके हमको जो उत्तर दे जाइए, बताइए हम हमारे प्रश्न का जवाब का सवाल का जवाब दे जाइए, क्या है ना, हम खुद बोले मेरा तो नंबर नहीं आया, इतने सारों के नंबर नहीं, उनको ले जा रहे हैं ये कैसे। तो उन्होंने बताया विष्णु दूत उच्चू। तो विष्णु दूत ने कहे कि आपने तो कहे सही, लेकिन आप जो लोग सब सुने, वो सुनने में शून्य होता है, जैसे आप सब जानते होंगे, आप लोग थोड़े बहुत तो स्कूल कॉलेज में पढ़े होंगे, एक क्लास में कम से कम 40-50 लड़के तो बैठते हैं, है ना, नहीं एक टीचर आता है, एक समय में एक टीचर एक सब्जेक्ट के ऊपर लेक्चर देता है, जो भी ब्लैक बोर्ड में लिखता है, समझाता है, पढ़ाता है, और 50-60 लड़के बैठकर सुनते हैं उसको। और जब परीक्षा होता है तो एक होगा फास्ट और कोई सेकंड, बाकी थर्ड में कुछ होंगे, बाकी फेल बहुत सारे होंगे। ऐसे क्यों, एक ही स्थान पर एक ही सब्जेक्ट पर एक ही टीचर से एक ही विषय को सुने इतने सारे एक साथ में, फल में अंतर क्यों है। बोले ही अंतर होता है क्योंकि सुनने में सुनने होता है, श्रवण में अंतर है, भले सभी ने थे लेकिन सभी ढंग से नहीं सुने। बोले फिर सुनना कैसे होता है, बोला सुनना कंप्लीट तभी होता है, श्रवण केवल सुन लेने से नहीं होता, सुन लेने के बाद उसके ऊपर चिंतन करना होता है, जाकर के मनन करना होता है, उसके चिंतन मनन फिर दूसरे से डिस्कशन निध्यासन, ये तीन क्रिया जब श्रवण के बाद नहीं करते तो श्रवण पूरा नहीं होता, खाली सुन करके चले जाने से वो तो गए, इस कान में इस कान निकल गए, वो नहीं होता उसको। इसलिए सुनने के बाद जाकर के उसको बैठ करके खुद सोचो, चिंतन मनन करो, दूसरे से चर्चा करो, डिस्कशन करो, किसी के सामने फिर बोलो, तब जाकर के सुनने का वस्तु पूरा होता है, श्रवण का पूर्णता तभी होता है। तो बोलते ये आप लोग ऐसे कुछ नहीं किए हैं, लेकिन उन्होंने तीन बार खाना पीना सुना नहीं, यही करता था, तो इसलिए श्रवण का पूरा फल उनको मिला, आप लोग को नहीं मिला। अगर आप दोबारा करो और ऐसे ऐसे करेंगे तो आपको मिला, और दोबारा उन्होंने किए इतने सीरियस, सबको सब गए। तो इसी में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं ये श्लोक में कि ये जो ऋषभदेव थे, ऐसे ऐसे भगवान साक्षात आदि गुरु थे, समस्त समाज के गो ब्राह्मण समाज वेद के लोग गुरु थे, और ऋषभदेव के जो शिक्षाएं हैं और उनके चरित्र, उनको जो इसी प्रकार सावधानी से श्रवण करे, श्रवण करे मतलब वो समझ ले क्या क्या करना होगा पूरा कोर्स को, और जो श्रवण करे उनका तो होगा ही कल्याण, और जो श्रवण कराए और अनुमोदनकारी भी। बोले सभी का, बाकी कुछ हो ना हो, उनका जीवन में जितने अमंगल है सब दूरीभूत हो जाए। अभी हरणम, अभी तो सारे हरण हो जाएगा, सारे अमंगल खाली हो जाएगा, क्योंकि महामंगल निलय। ये भगवान की ये जो शिक्षाएं और चरित्र इतने मंगलमय है, उसको केवल श्रवण मात्र से ही, स्मरण मात्र से ही, कथन मात्र से ही, केवल चर्चा मात्र से ही आपका अमंगल हरण हो जाएगा। केवल अमंगल हरण नहीं होगा, और उसको ध्यान से अगर सुनेंगे श्रद्धा के साथ, वो केवल यही आशीर्वाद नहीं दिए, बोले अंतिम कहते हैं उनको भगवान वासुदेव में विशुद्ध भक्ति भी प्राप्त हो जाएगा। बोलो ये भी हो जाएगा, बताओ। हम तो ले देकर ही चाहते हैं, और क्या, अनर्थ निवृत्ति हो जाए और भक्ति हो जाए, और दोनों चीज इसी श्लोक में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि दोनों इसी में हो जाए। केवल इसी शिक्षाओं को मैं तो कभी कभी किसी को बोलता हूं कि ये फिफ्थ कांटो का फिफ्थ चैप्टर का नंबर वन, पांच और छठा अध्याय दोनों अध्याय करो, नहीं करो तो 1 to 27 तक है, 28 तक जो वर्ष को, उसको कम से कम 7 बार पढ़ो, श्लोक नहीं उसके श्लोक अनुवाद और तात्पर्य को 7 बार पढ़ो, और पढ़ने पढ़ करके उनको सोचो, मनन करो, उनको नोट करो, फिर अंडरस्टैंडिंग की लिखो क्या समझे, तो निश्चित रूप से अमंगल हरण होगा ही और भगवान में भक्ति होगा ही। ये हमारा कथन तो नहीं, सुखदेव गोस्वामी का आशीर्वाद है, वो तो कभी गलत हो ही नहीं सकता। लेकिन मैं इसलिए 7 बार कहता हूं कि हम इतने दिमाग मूढ़ है, इतने थर्ड क्लास भी नहीं, फोर्थ क्लास पता नहीं कितने, टेंथ क्लास को क्लास का जितने क्लास का है, तो इसलिए एक बार सुनने पढ़ने से नहीं होगा, मिनिमम 7 टाइम तो कुछ तो होगा, आंच पड़ेगा, क्यों स्टेनलेस स्टील है हमारा हार्ट और माइंड, तो इसे 7 बार अगर लगे रहे उसके पीछे, पढ़े समझने के लिए प्रयास करें, सुने उसमें लगे, और एक बार समझ में आ जाए, बार बार सुने, किसी में चर्चा करे, बोले कुछ करे 7 टाइम, तो निश्चित रूप से, क्योंकि जितने करेंगे ये दो काम तो उनके साथ आशीर्वाद रूप से आया है, क्योंकि हमारे जीवन के हृदय के अनर्थ निवृत्ति अमंगल हरण होगा और भगवान में विशुद्ध भक्ति होगा, और जितने जितने आप कुछ समझ में सुनकर करेंगे इतने इतने मात्रा में होते जाएगा। तो हमारे सामने गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि अगर केवल इसी 2 अध्याय को हमने उसको अपना प्रोजेक्ट बना ले, चलो डेली 1-2 घंटा उसमें देते हैं, उसको पढ़ते हैं, एक एक श्लोक कम से कम 2-2 दिन तक, भले हफ्ता भर चले, पूरा 1 साल का कोर्स लीजिए उसके ऊपर, और आप स्वयं अनुभव करेंगे, क्योंकि भक्ति ऐसे एक चीज है। भगवान भगवत गीता में कहते हैं भक्ति के बारे में कि भक्ति ऐसा चीज है जो भगवद गीता के 9वां अध्याय का 2वां नंबर श्लोक क्या है, किसकी याद है, राज विद्याम राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्ष अवगमम धर्मम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। ये सारे भक्ति की महिमा भगवान बोलते हैं, सही भगवान वाच बोलते हैं, भक्ति है क्या ना, विद्याओं के किंग ऑफ नॉलेज, विद्याओं के राजा, राज विद्या है, कोई छोटा मोटा नहीं है। आप जितने स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं सब क्या विद्या, तो उसको विद्या के अंडर में नहीं आता, क्योंकि विद्या का जो पहचान है, शास्त्र में कहा गया सा विद्या, विद्या तो वो है जिनके द्वारा बुद्धि कृष्ण में लगे, सा विद्या, ये रामानंद राय कहते हैं। और एक जगह में कहा गया विद्या क्या सिम्टम क्या है, विद्याम ददाति विनयम, आपको नम्र बना देगा, आपको विनम्रता देता है जो शिक्षा, तो विद्या है। लेकिन आप सच बोलिए अनेस्टली, वो जो हम पढ़ते हैं, जिसने डिग्री अचीवमेंट करते हैं, वो हमको अहंकार देता है या नम्रता देता है? देता है ना, तो समझ लीजिए विद्या है क्या? विद्या है, विद्या है ही नहीं, पहले सिम्टम से मार खा गया, अविद्या है सारे। तो जो सही विद्या है उसका, सही विद्याओं का जो राजा है वो है भक्ति। राज विद्याम राजगुह्यम, जितने सीक्रेट है सबसे गुह्य ज्ञान है, बोलते उसमें भी टॉप सीक्रेट है। राज विद्याम राजगुह्यम, और जितने प्यूरिफाइंग एजेंसी है, आप नहाने से, मंत्र जप करने से, और कई यज्ञ में बैठने से, अच्छा कपड़ा पहनने से, और जो जो उपाय सब है थोड़ा पवित्र हो जाए शुद्ध होने के लिए, बोलते हैं कि ये सबसे मोस्ट प्यूरिफाइंग एजेंसी भक्ति, आपने आप में शुद्ध कर डालेगा आपको। पवित्रम इदम उत्तमम, बोले ऐसा नहीं कि गड़बड़, बोले सबसे उत्तम है, उत्तम बहुत अच्छा है भक्ति, पवित्रम इदम उत्तमम। और बोलते प्रत्यक्ष अवगमम, डायरेक्ट एक्सपीरियंस होगा। कभी कभी हम कहते हैं कि आप कर लो ना, एक काम करो, अभी बैंक में पैसा जमा करो, दो दिन के बाद में खाता में आ जाएगा, कि नहीं तो ये करो, आप डेली डेली ये खाओ, देखना एक महीने के बाद आपका शहद आ जाएगा, बन जाएगा, है ना? नहीं कि इसे सेवन मेडिसिन खाओ, दो चार दिन सेवन करने से फिर जुकाम ठीक हो जाएगा, ऐसे कहते ना। मन जो काम करने के लिए बोलते हैं, बोलते रिजल्ट आएगा, आएगा बाद में आएगा, थोड़ा समय तो लगेगा, लेकिन ये भक्ति में ऐसा नहीं कहते, बोलते नहीं इमीडिएट रिजल्ट, अभी भक्ति करो, बाद में दूसरे साल में दूसरे, बोले नहीं ऐसा नहीं, ये बाकी कर्म ज्ञान से ऐसा होता है, अभी पढ़ो लिखो एडमिशन करो, छह साल के कोर्स करो, परीक्षा दो, रिजल्ट आने से पता चलेगा। बोले ऐसा कुछ नहीं, आज ही शुरू किया आज ही पता चलेगा। इस वक्त प्रत्यक्ष अवगम, सामने सामने, रिजल्ट के लिए कोई अपेक्षा आशा समय नहीं है, प्रत्यक्ष। उदाहरण देते हैं, कैसे उदाहरण देते हैं, हम बाकी कुछ काम नहीं करते, एक काम तो डेली करते हैं, उसमें कभी छूट नहीं होता, छुट्टी फुट्टी नहीं, भोजन का, भले एकादशी भी हो जाए, सजला सफला करते तो हैं, इसमें तो छूटते नहीं। तो भोजन जब आप करते हैं, आप जितने यहां बैठे हम लगाए, कभी खाते समय किसी दूसरे पास में बैठा भाई साहब और खाऊं क्या, मेरे पेट भरा क्या, कभी किसी पूछे पूछे कभी ना, नहीं भरे भर, कोई किसी को नहीं पूछा। आपने आप में परोसने वाला बोलता है, और एक ले लो, एक गुलाब जामुन है गरम गरम, और एक ले लो, ना हो गया, उल्टी हो जाएगा फिर ज्यादा देने से। अरे इतना चाहता था नहीं, आपने आपको स्वयं पता चलता है किसका हेल्प नहीं चाहिए भोजन में, पेट भरा कि नहीं, किसी को जरूरत है पूछने के लिए, नहीं। ठीक इसी प्रकार भक्ति है, किसी को पूछना जरूरत नहीं है, आपने आपको पता चल जाएगा कि हम किस स्थिति में थे। अब किसी से भूखे आदमी भोजन करे तो किसी को पता, टेस्ट करने की रिपोर्ट नहीं लेना पड़ेगा कि मैं पेट भरा कि नहीं और खाऊंगा कि नहीं, नहीं, खाना अपने आप रुक जाएगा। जे एक एक ग्रास खाते जाएगा, तीन क्रिया एक एक साथ में होगा, एक भोजन के ग्रास लेगा भूखे आदमी तो क्षुधा निवृत्ति होगा तो होगा, टेस्ट तो मिलेगा ही, और जो भूख में पीड़ित दुर्बलता था वो भी दुर्बलता भी चले जाएगा, है ना? नहीं बोलते हैं कि दुर्बल से हट करके सबल होगा, रस प्राप्ति होगा और खिदा निवृत्ति हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार भक्ति का एक एक क्रिया, एक एक अंग थोड़ी थोड़ी से करते हैं, जितना करेंगे इतना रिजल्ट इमीडिएट मिलेगा। क्या सही भक्ति करो तो तुरंत सबसे पहले जैसे खिदा से निवृत्ति हो जाए, इस भौतिक भोग से निवृत्ति होगा ना, नहीं चाहिए, भौतिक इंद्रिय के भोग से निवृत्ति होगा सबसे पहले, खिदा निवृत्ति। और उसके बाद सिर्फ बल आदि प्राप्त होता है तो वो प्राप्त होगा भगवान की ओर, यहां से निवृत्त होकर यहां से निवृत्ति होगा, वहां बढ़ेगा, यहां से मन हटेगा यहां से मन लगेगा, लग किस प्रकार लगा ना, रस प्राप्ति होगा, जो टेस्ट मिलेगा, और टेस्ट है रस, रस प्राप्ति होगा, वो हरेक कौर के खाने के साथ में प्राप्ति होते जाएगा और एक बार पूरा संतुष्टि हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार ये भक्ति है, किससे हमको रिपोर्ट लेना नहीं पड़ेगा। तो ये जो भक्ति प्राप्त होगा, जो इस ऋषभ देव की शिक्षाओं की अगर कोई श्रवण मनन चिंतन करे ढंग से कोई करे, तो निश्चित रूप से उनका समस्त अमंगल अनर्थ दूरीभूत होकर के इस प्रकार के विशुद्ध भक्ति, भगवान वासुदेव के श्री चरण में विशुद्ध भक्ति के लक्षण प्रकट होगा और प्राप्त ही हो जाएगा। केवल इतने में सुखदेव गोस्वामी कई जगह में भागवत में प्राय जगह में सभी जो अध्याय के अंत में आशीर्वचन देते हैं ऐसे करने से ऐसे हो जाएगा। प्रत्येक प्रभुपाद जी ने अपने तात्पर्य लिखते हैं पूरे भागवत में भक्त का और भक्तों का और भगवान के चरित्र के वर्णन है, जिसको सुनने से हमारे अनर्थ निवृत्ति होता है और भक्ति की प्राप्ति होता है। प्रत्येक प्रसंग ऐसा ही है, इसमें चाहे कपिल भगवान के सुनो, ऋषभदेव भगवान के सुनो, भगवान कृष्ण के सुनो, राम के सुनो, बराहावतार, नरसिंह अवतार, कितने सब सभी ऐसे बार भूले, सभी जगह में ऐसे ही आशीर्वचन आया है, सभी जगह से ऐसे आशीर्वचन आया कि भक्ति प्राप्ति हो जाएगा। लेकिन यहां भक्ति के प्राप्ति तो होगा ही, लेकिन भक्ति प्राप्ति होने से पहले जो कार्यक्रम होना चाहिए वो भी हो जाएगा। बाकी जगह में तो अनर्थ निवृत्ति करना ही पड़ता है, लेकिन यहां पे अनर्थ निवृत्ति केवल श्रवण और कथन मात्र से हो जाता है। ये एक्स्ट्रा बेनिफिट है इस शिक्षाओं का, क्योंकि शिक्षा इतने निचोड़ है विशेष करके मनुष्यों के लिए। जो शिक्षा शुरू होता है पहले से एक नंबर श्लोक, नायम देह देह भाजाम नृलोके कष्टान कामान अर्हतांग बड़िभुजाम जे तपो दिव्यम पुत्र का जे न सत्तम शुद्धे जस्मात ब्रह्म सुखम तु अनंतम, यही से शुरू होता है शिक्षा। वही एक एक श्लोक इतने महत्वपूर्ण है, इतने महत्वपूर्ण है। तो एक श्लोक को जो अगर हम समझने के लिए ढंग से प्रयास करते हैं तो हमारे अविद्या के गांठ खुलने लगता है। बिल्कुल हम कई जन्म से अविद्या से ग्रसित है, लेकिन उसको इतने आसान नहीं हो सके, लेकिन उसको अगर सही में समझ जाए, समझने के लिए समझ आइए, उसके ऊपर प्रयास करना पड़े ढंग से, उसको पढ़ो सुनो मनन करो चिंतन करो, तब एक बार वो अंडरस्टैंडिंग आ जाए उसका, तो निश्चित रूप से अमंगल और अविद्या हरण हो जाएगा। और जैसे जैसे अविद्या के हरण होगा तो विद्या की प्राप्ति हो जाएगा। सा विद्या, विद्या तो वो है जिसमें जिसके द्वारा कृष्ण में रति लगे, मन लगे, तो कृष्ण मन लगेगा। तो ये आशीर्वाद मूलक श्लोक है। सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित हुए कहे कि राजा अभी ये जो मैं चरित इरितम में जो वर्णन किया ये कोई साधारण बात नहीं है। उसके कहने का मतलब आप उसको दोबारा तीन बार और चार बार रिपीट करो, उसको पढ़ो सुनो उनको चिंतन करो, क्योंकि इसी चिंतन से मनन से आपका जो अनर्थ है, जितने अमंगलता है दुश्चरित है सब निराकरण हो जाएगा, दुर्भूत हो जाएगा। और ऐसे दुर्गुण दुश्चरित चला जाने के बाद में भगवान में भक्ति होना स्वाभाविक हो जाएगा, भगवान वासुदेव मन लग जाएगा। भगवान वासुदेव स्वयं ऋषभदेव है, ऋषभदेव आगे शिक्षा देंगे पुत्रों को, मैं ही हूं वही भगवान, मुझ में ही मन लगाओ, मेरा ही पूजा सेवा करो, ये बात स्वयं कहेंगे। तो इस प्रकार स्वयं भगवान ने ही ये उपाय बताते हैं, और भगवान के शुद्ध भक्त उनके प्रतिनिधि श्री सुखदेव गोस्वामी, वो भगवान से कुछ कम नहीं है। तो उन्होंने भी यही रिकमेंड करते हैं हम लोग के लिए कि इसी को अध्ययन अध्यापन श्रवण पठन कथन चिंतन मनन जितने किया जाए। प्रभुपाद जी ने भी ये टीचिंग शब्द शब्द के ऊपर बहुत ही गुरुत्व दिए हैं। इस श्लोक को तो कितने कितने बार उन्होंने कोट किए हैं, इस श्लोक को ये फिफ्थ जो श्लोक है। तो तो इतने इम्पोर्टेंट है, हम जैसे पतित कलिहत जीव जिन्होंने इस देह गह में बुरी तरह से फंसे हैं, उनकी इससे निकालने के लिए हाइड्रोज मेडिसिन की तरह काम करता है, लेकिन बड़े कड़ा, लेकिन जितने कड़ा होगा इतना काम तो करता है। तो इस प्रकार इस चरित्र को पूर्ण करके इति शब्द उच्चारण करके सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि अब तक मैं जो बोल दिया इति हो गया, अब चरित्र को अब आपके ऊपर टैक्स देता हूं, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट, बार बार सुनो, बोलो, चर्चा करो, मनन करो, चिंतन करो, अब जितने करोगे इतने फल आपको प्राप्त होगा, अमंगल हरण होगा और मंगल प्राप्ति हो, भक्ति प्राप्ति हो जाएगा। हरे कृष्ण। किसका कोई प्रश्न है? यस।